हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मिस्टर जिंदल अमन की टीम के साथ सीक्रेट एजेंसी के ऑफिस में थे। वहां उन्हें आंशी के विधिक के साथ कनेक्शन का पता चला, तो वहीं बातों बातों में मिस्टर दत्त ने भी आंशी और अमन के बचपन के रिश्ते के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर मिस्टर जिंदल भी हैरान थे, ये आंशी को बचपन से कैसे जानता है। उन्होंने पूछा, सर आपको याद नहीं होगा, उस बात को लगभग 13 साल होने को आए हैं। अमन आर्टिस्टिक के ओनर मिस्टर भरत कपूर का बेटा है, मिस्टर दत्त ने बताया। उनकी मौत का सुना था मैंने, तुम बहुत छोटे रहे होगे तब, मिस्टर जिंदल ने कहा। अंकल आप अमन ब्रो सर और आंशी के बचपन की स्टोरी बताइए ना, जस ने क्यूरियोसिटी से पूछा। ये वही मनहूस दिन था जब साथ काम करते हुए रॉबिन को मेरी सच्चाई पता चल चुकी थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने उसे अपने परिवार मेरी सबसे बड़ी कमजोरी से मिलवा दिया, उसने उसी का फायदा उठाया, मिस्टर जिंदल बताते हुए उस दिन को याद करने लगे। शाम के 4 बज रहे थे। शिव जिंदल अपनी पत्नी अनु और 11 साल की आंशी के साथ गाड़ी में थे। वो तेज गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहे थे। हम चंडीगढ़ से बाहर निकल आए हैं शिव, अब तो बता दीजिए हम कहाँ जा रहे हैं, अनु ने पूछा। शिव ने गाड़ी चलाते हुए जवाब में कहा, अभी कुछ मत पूछो अनु, बस यूं समझ लो फिलहाल के लिए हमें यहाँ से इतना दूर जाना है कि गलती से भी उनकी नज़र न पड़ सके। ठीक है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बोलते हुए अनु ने गाड़ी की बैक सीट पर देखा। आंशी बैक सीट पर आराम सो रही थी। अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। अनु ने गाड़ी के बाहर मुंह निकालकर देखा तो उनके पीछे 10 से 12 गाड़ियां आ रही थीं। शिव ने हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींचा। अनु पीछे अंशु के पास जाओ, वो डर जाएगी, शिव ने घबराकर कहा। अनु जल्दी से आंशी के पास गई, उसने आंशी को गोद में लिया। मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं, आंशी की नींद टूट गई थी, गोली की आवाज से उसकी नींद टूट गई थी। बेटा आप सो जाओ, हम बस गेम खेल रहे हैं, हमें कहीं बहुत जल्दी पहुँचना है, शिव ने गाड़ी चलाते हुए कहा। गाड़ी की स्पीड बिल्कुल तेज थी। वो लोग कुछ ही आगे पहुंचे होंगे कि उनके पीछे वाली गाड़ियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और लगातार उन पर गोलियों की बारिश करने लगे। ये सब देखने के बाद आंशी जोर जोर से रोने लगी। अनु ने उसे अपने सीने से लगा रखा था। अनु तुम नीचे झुक जाओ, शिव ने गाड़ी चलाते हुए कहा। उसके कहते ही अनु आंशी को लेकर नीचे बैठ गई। उसने आंशी को कसकर गले लगा रखा था। ये सब कब रुके था, आंशी डर गई है, अनु ने रोते हुए कहा। शिव उसकी बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले किसी ने उनकी गाड़ी के टायर पर गोली चलाई। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो सामने की गाड़ी से जा टकराई। शिव का सर गाड़ी के स्टीयरिंग पर था और उनके माथे पर से खून आ रहा था। अनु को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो शिव को संभाले या आंशी को। तभी किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अनु को खींचकर आंशी से अलग कर दिया। प्लीज़ हमें जाने दीजिए, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, मैं उन्हें समझा दूंगी, ये आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, अनु रोते हुए बोली। उसने आंशी का हाथ पकड़ लिया। उसके सामने रॉबिन और उसके कुछ आदमी थे। रॉबिन ने एक नज़र आंशी की तरफ देखा जो डर कर अनु से चिपकी हुई थी। वो छुपकर रॉबिन की तरफ देख रही थी। आंशी बेटा मुझे पहचाना, मैं आपका रॉबिन अंकल, याद है ना पिछली बार हम घर आए थे और आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आए थे, रॉबिन आंशी से प्यार से बात कर रहा था। वो उसके पास आया और अनु उसका हाथ छुड़ाकर अपने पास ले आया। मुझे अपने मम्मा के पास जाना है, आंशी रोते हुए बोली और वापस अनु की तरफ दौड़कर चली गई। आंशी के लिए हमें जाने दीजिए, आई प्रॉमिस मैं शिव को समझा दूंगी, वो कुछ नहीं करेंगे, अनु गिड़गिड़ाते हुए उनसे अपनी जान की भीख मांग रही थी। रॉबिन ने अपने आदमी की तरफ इशारा किया, उसने जाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो शिव गाड़ी के बाहर गिर गया। उसके माथे से बहुत खून बह रहा था, वो अभी भी होश में था, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने जैसे तैसे अपने हाथ जोड़े और बिना कुछ कहे अनु और आंशी की जान बख्शने की दुहाई मांगने लगा। ये सब तो मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था शिव जिंदल, मैंने तुम्हें दोस्त समझा, अपने साथ अपनी हर डील में तुम्हें लेकर गया, तुम्हारे बिजनेस को आगे बढ़ाया और तुम एक सीक्रेट एजेंट निकले, अब देख लो तुम्हारे धोखे की सज़ा तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतनी पड़ रही है, रॉबिन ने गुस्से में कहा। ये पहली बार था जब अनु को क्लियरली पता चला था कि शिव जिंदल एक सीक्रेट एजेंट है। हालांकि उसे पहले भी शक था लेकिन शिव ने उसे कभी साफ तौर पर नहीं बताया। उसने शिकायत भरी नज़रों से शिव की तरफ देखा। उसके प्रोफेशन की वजह से आज उनकी जान खतरे में आ गई थी। अब कुछ भी समझने समझाने का वक्त बीत चुका है। मॉन्टी, बच्ची को इसकी माँ से अलग कर, रॉबिन ने एक आदमी से चिल्ला कर कहा। उसका इशारा पाते ही मॉन्टी ने आंशी को अनु से दूर कर दिया। आंशी दौड़कर वापस अनु के पास जा रही थी कि उसकी आंखों के सामने रॉबिन ने अनु को गोलियों से भून डाला। अनु को कुछ भी समझने या आखिरी बार आंशी को देखने तक का मौका नहीं मिला। वो जमीन पर पड़ी थी और उसकी सांसें थम चुकी थी। बच्ची और शिव जिंदल का क्या करना है बॉस, मॉन्टी ने पूछा। करना क्या है, इन दोनों को किसी दूसरी गाड़ी में बिठा दो और उसके ब्रेक्स निकाल दो। थोड़ी दूर तक गाड़ी चलाने के बाद बाहर निकल आना। अब तो ऊपर वाला ही इनका मालिक है, देखते हैं इनकी सांसें कितनी बची हैं। रॉबिन ने ऑर्डर दिया और अपनी टीम के साथ वहां से चला गया। उसके ऑर्डर के हिसाब से मॉन्टी ने शिव जिंदल और आंशी को एक कार में बिठाया। वो उस कार को ड्राइव कर रहा था। कार की फ्रंट सीट पर उसके साथ शिव जिंदल अधमरी हालत में बैठा था, तो वहीं उसकी गोद में आंशी थी। अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरता देख आंशी शॉक में जा चुकी थी। उसके साथ क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मॉन्टी कार से निकल गया और गाड़ी मेन रोड पर बिना किसी बैलेंस के चल रही थी। वो कुछ ही दूर पहुंची होगी कि जाकर किसी दूसरी गाड़ी से जा टकराई। गाड़ी वहां बीच रोड पर खड़ी होने की वजह से उसमें कोई नहीं था, लेकिन कुछ ही देर में गाड़ी का मालिक वहां पहुंच गया। उसने शिव जिंदल और आंशी को एक साथ देखा तो वो हैरान था। वो शिव के पास आकर बोला, तुम्हारी ये हालत किसने की है? अपना ना सही इस छोटी सी बच्ची का तो ख्याल करते। उसने आंशी को बाहर निकाला। उसके माथे और हाथ पर हल्की चोट लगी हुई थी। आंशी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। मैं कुछ नहीं बता सकता, प्लीज़ मेरी बेटी को बचा, मुझे हॉस्पिटल, मेरी बेटी को यहाँ से ले, गुंडे हमारे पीछे। शिव जिंदल जैसे तैसे बोलने की कोशिश कर रहे थे। वो घायल थे और उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। फिर भी उस आदमी ने उनकी बात को समझ लिया। ठीक है, मैं एम्बुलेंस को कॉल कर देता हूँ और पुलिस को भी बुला लूँगा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम बच जाओगे। तुम्हारी हालत देखकर ही मैं समझ गया था मामला गड़बड़ है। फिलहाल इस बच्ची का बचना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम बच भी जाओ तो एक नाम हमेशा याद रखना, आर्टिस्टिक। शिव जिंदल के सामने जो आदमी था वो आर्टिस्टिक का मालिक भरत कपूर था। उसने आंशी को गोद में उठाया और बिना देरी किए वहां से निकल गया। रास्ते में उसने पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को कॉल कर दिया। कुछ दूर पहुंचने के बाद उन दोनों को लिफ्ट मिल गई। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं। मिस्टर कपूर आंशी को लेकर कहाँ गए मैं नहीं जानता। मुझे जब होश आया तब मुझे आर्टिस्टिक का नाम याद रहा और फिर बाद में पता चला कि वो आर्टिस्टिक के ओनर थे। जब मुझे पूरी तरह लगने लगा कि मैं सेफ हूँ तब लगभग एक महीने बाद मैं उनसे मिला और आंशी को वापस अपने पास ले आया। उस दिन की कहानी सुनने के बाद वहाँ शांति छा गई। कुछ देर के बाद मिस्टर दत्त ने कहा, वो सिर्फ 11 साल की थी जब उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते देखा था। शायद अब वो इंसिडेंट उसे याद नहीं है और अच्छा ही है जो वो सब भूल गई। बहुत बहादुर है वो बच्ची। उनसे सारी बात सुनने के बाद अमन ने कहा, हाँ मुझे याद आ रहा है, मैं उस टाइम लगभग 14 ईयर्स का था। एक शाम अमन चेतना जी के साथ सी फैमिली फंक्शन में गया हुआ था। वो दोनों वहां से आए ही थे कि उनके आने के कुछ देर बाद उसके पापा मिस्टर भरत कपूर जल्दबाजी में घर आए। उनके साथ एक बच्ची थी, उसके माथे और हाथ पर चोट लगी थी और कपड़े खून से सने हुए थे। उसकी वो हालत देखकर चेतना जी चौंक गई। उन्होंने कहा, ये बच्ची कौन है और इसकी ऐसी हालत? अभी कुछ मत पूछो चेतना, कुछ देर पहले मुझे हाईवे से आगे एक आदमी मिला, उसके साथ ये बच्ची है, ये उसकी बेटी है, उनके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। ये तो शुक्र मनाओ बच्ची बच गई और खुशकिस्मती से मैं यहाँ ले आया। दुआ करो इसका बाप भी बच जाए। भरत ने आंशी को एक चेयर पर बिठा दिया। अमन उसकी तरफ गौर से देख रहा था। वो एक दुबली पतली सी लड़की थी जिसके कंधे से लंबे बाल थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और उनमें रंग बिरंगे क्लिप्स लगे हुए थे। उसने डेनिम शॉर्ट्स और ऊपर टी शर्ट पहन रखी थी। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? चेतना जी ने कहा, बच्ची है, डर गई होगी, इसकी आंखों के सामने इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तुम इसे कुछ खिलाने की कोशिश करो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। और हाँ, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। भरत ने उसे जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए और डॉक्टर को कॉल करने के लिए चला गया। अमन चेतना जी के साथ खड़ा आंशी की तरफ देख रहा था। चेतना जी ने उसे खाना खिलाने की कोशिश की पर वो कुछ नहीं खा रही थी। अमन को उसे देखकर इरिटेशन फील हुई तो वो वहां से चला गया। उसके कानों में अभी भी चेतना जी की आवाज आ रही थी, घबराओ मत बच्चा, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। तुम्हारे पापा भी थोड़े दिनों में आ जाएंगे। तुम्हें तब तक स्ट्रांग रहना है और स्ट्रांग रहने के लिए खाना खाना पड़ता है। चेतना जी उसे प्यार से समझा रही थी। उन सब के बीच तेजो जी अपने काम से लौटी। उन्होंने भी आंशी को देखा तो वो हैरान थी। ये बच्ची कौन है और इसकी ऐसी हालत किसने की? उन्होंने पूछा। अभी तो कुछ मत पूछिए बीजी, इसकी हालत बहुत खराब है। भरत इसे लेकर आए थे, उन्होंने इसका ख्याल रखने का कहा था, लेकिन ये कुछ खा ही नहीं रही, चेतना ने जल्दबाजी में बताया। उनकी बात सुनकर तेजो जी आंशी के सामने बैठ गई। उन्होंने नोटिस किया आंशी सिर्फ एक दिशा में देख रही थी। इसे कोई बहुत बड़ा शॉक लगा है, उन्होंने कहा। हाँ हो सकता है, भरत ने बताया था इनकी हालत बहुत खराब थी, कुछ बंदे इनके पीछे पड़े थे। इसके बाप की हालत तो मरने वाली हो रखी थी, जैसे तैसे बच्ची को बचाकर यहाँ लेकर आए हैं। बीजी आप तो सामने वाले का दिमाग पढ़ सकती हैं ना, आप ही कुछ कीजिए जिससे ये खाना खा ले। चेतना मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, मैं सामने वाले का बिहेवियर ऑब्जर्व करके उसमें दिमाग में चल रही चीज़ों का सिर्फ आइडिया लगाती हूँ। इसकी हालत अलग है, ऊपर से ये इतनी छोटी भी है, पहले इसे नॉर्मल करना होगा, तेजो जी ने जवाब दिया। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे तभी अमन किसी काम से कमरे से बाहर आया। उसने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। इसे नॉर्मल करना है तो सबसे पहले इसे उस एक्सीडेंट से बाहर निकालना होगा। मॉम आप इसके कपड़े देख रही हैं, कितने गंदे हो रखे हैं, उन पर खून लगा हुआ है, इसे देखकर तो किसी को भी उल्टी आ जाए, पहले आप इसके कपड़े चेंज कीजिए। उसने वहीं दूर से खड़े जवाब दिया और फिर किचन में चला गया। चेतना जी ने अमन की बात पर हामी भरी। वो आंशी को तेजो जी के पास छोड़कर तुरंत शॉपिंग करने के लिए निकल गई। कुछ देर बाद वो उसके लिए नए कपड़े लेकर आई। उसने आंशी को नहलाया और उसके कपड़े चेंज किए। रात के समय पूरी कपूर फैमिली आंशी के इर्द गिर्द थी और उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। खा लो बेटा खाना, ऐसा समझ लो कि मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, चेतना जी ने अपनी तरफ से आखिरी कोशिश करते हुए कहा। उनकी बात सुनकर आंशी ने उनकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे और वो चेतना जी से लिपट गई। आंटी मेरी मम्मा अब कभी वापस नहीं आएगी ना, उन गंदे अंकल ने उन्हें गोली मार दी। आंशी ने इतनी देर में पहली बार कुछ बोला था और उसकी बातों ने सबको सकते में डाल दिया। लगता है इन लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है, ना सिर्फ उसने अपने पापा के साथ बल्कि अपनी माँ को भी अपनी आंखों के सामने मरते देखा है, उसकी बातों से तेजो जी ने अंदाज़ा लगाया। चेतना जी ने प्यार से आंशी की तरफ देखा जो डर के मारे उनसे चिपकी हुई थी। वो उसकी हालत समझ सकती थी, आंशी के मासूम दिल के बारे में सोचकर उनकी आंखों में भी आंसू थे। तो वही अमन तुरंत वहां से चला गया।